আজ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী ও শ্রীল শিবানন্দ সেনজির জীবন চর্চা করকে হম ইসকো শিবানন্দ সেনজি কা প্রতিবর্ষ চাতুর্মাস্য বর্ষা ঋতুকে চার মাসকে অবধি সে এক মাস পূর্ব শিবানন্দ সেন বার্ষিক রথযাত্রা উৎসব মে সম্মিলিত হোনে কে লিয়ে বঙ্গাল সে 200 ভক্তগণ কি এক মন্ডলী লেকর জগন্নাথপুরি যাতে থে বে সবকে ভোজন চুঙ্গি তথা ঘাট কর অথবা আবাস কা ব্যয় স্বয়ং উঠাতে দিতে ব্যক্তিগত রূপ সে উনকি সুখ সুবিধা কা প্রবন্ধ করতে থে শিবানন্দ সেন जब सबके प्रति जीव के प्रति वैष्णव करुणा दर्शाते थे चाहे वे मानव हो अथवा पशु। जब एक भटकता हुआ कुत्ता उनकी मंडली में से सम्मिलित हो गया तब शिवानंद सेन ने उस कुत्ते को भोजन कराया था, उसके लिए नाव को किराया भी चुकाया। एक दिन जब वो कुत्ता लुप्त हो गया तब शिवानंद सेन ने 200 व्यक्तियों को उसकी खोज के लिए भेजा। पूरी पहुंच उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु उस कुत्ते को सामने नारियल का टुकड़ा डाल रहे थे। वे कुत्ता से चैतन्य महाप्रभु के महाप्रसाद ग्रहण कर समस्त भौतिक क्लेश से मुक्त हो गए। अगले दिन उस कुत्ते को अदृश्य पाकर शिवानंद सेन समझ गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। पूरी में चातुर्मास व्रत का पालन करते हुए शिवानंद सेन भक्तगण नियमित रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के आनंद वर्धन संघ में स्नान करते थे। शिवानंद सेन ने अपने सकल संपत्ति श्री कृष्ण एवं वैष्णव गणों को सेवा में लगा दी। उनके समग्र परिवार तथा सेवक गौरांग महाप्रभु के एक निष्ठ अनुयायी थे। शिवानंद सेन के पुत्र कवि कर्णपूर्ण गौरवर्ण उद्देश्य दीपिका में कहते हैं कि शिवानंद सेन श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम का मूर्ति रूप थे। श्री कृष्ण लीला में वे श्रीमती राधा रानी के दूरी बीरा गोपी है। एक भजन में देवकी नंदन दास उनका गुणगान करते हुए कहते हैं, मैं शिवानंद सेन को प्रणाम करता हूँ जो दिव्य प्रेम से परिपूर्ण है। श्री गौर राय के युगल चरण ही उनके जाति जीवन संपद है। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। और स्वरूप दामोदर जी के विषय में हम जानते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही प्रिय पार्षद हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के पूरा अंतरंग पार्षदों में से रामानंद राय स्वरूप दामोदर और सिक्खी महिती और हाँ साढ़े तीन पार्षद ये लोग थे। तो आज श्रील स्वरूप दामोदर जी का तिरुभाव दिवस है। श्री स्वरूप दामोदर जी श्रील राधा गोविंद महाराज जिनका आज व्यास पूजा है, वो बताते हैं कि स्वरूप दामोदर जी जब चैतन्य महापुरुष धराधाम से अप्रकट हो गए तो उनके विरह को सह नहीं पाए इतनी उनके अंदर विरह की ताप उठ रही थी कि उनके मुख से जो है अग्नि के ज्वाला निकल रहा था। तो इस प्रकार जो है अंदर से जो हृदय जो जल रहा था, तो इतनी ताप उनके शरीर में बढ़ गया था। फिर आज के दिन ही आज भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा है। श्री चैतन्य महाप्रभु आज के दिन कितना कीर्तन करते थे, तो उनको याद करके ये शिवानंद सेन भी रथ यात्रा में खूब उनकी सेवा थी, स्वरूप दामोदर जी का खूब सेवा था। तो आज इन दोनों ने जो है इस धराधाम से प्रकट हुए, तो आज जो हम उनको स्मरण करना चाहिए और उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी जो है श्री गौरांग महाप्रभु के प्रति, भगवान जगन्नाथ जी के प्रति हमारे जो भक्ति बनी रहे। तो इसके साथ आज हम लोग भगवान जगन्नाथ जी का लीला पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग जैसे जानते हैं, हम सब गौड़िया वैष्णव है, गौड़िया वैष्णव हमारा दृष्टिकोण अलग है जगन्नाथ जी के प्रति। सभी का दृष्टिकोण अलग अलग है, सब अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं भगवान जगन्नाथ जी को, तो हमारा गौड़िया वैष्णव दृष्टिकोण जो एक अलग है। तो हाँ, आज हम चर्चा करेंगे, चर्चा तो करते ही है, और अगर देखा जाए आज के दिन चैतन्य महाप्रभु का रथ यात्रा में क्या रोल था, उसकी चर्चा करने के लिए विस्तृत हमें योग्यता की आवश्यकता है, सुनने के लिए भी और बोलने के लिए भी वो योग्यता तो हमारे में नहीं है। तो आज हम लोग चर्चा करना चाहेंगे कि जगन्नाथ जी को उड़ीसा के लोग किस भाव से आज रथ यात्रा मनाते हैं, उसमें से एक पाठ को हम आज चर्चा करेंगे, लक्ष्मी जी का पाठ क्या है रथ यात्रा में। तो इसके लिए हम और इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ में ही जगन्नाथ जी परम भक्त भक्त शिल भक्त सालवेग जी का द्वारा लिखित भजन है, बहुत सुंदर भजन है, इसका फोटोकॉपी किया हुआ है, आप लोग इसको वितरित कर लीजिएगा। तो ये बड़ा सुंदर प्रार्थना है। कभी अगर हम जगन्नाथ मंदिर जाते हैं तो आज की कथा को भी वही व्यक्ति समझ पाएंगे जो जगन्नाथ पुरी गए हैं, जगन्नाथ जी दर्शन किए, तो व्यक्ति कथा को अच्छा समझ पाएगा। और ये जो प्रार्थना बहुत ही प्रसिद्ध प्रार्थना है, हालांकि ये जगन्नाथ के मंदिर मंगला आरती में सब पाठ करते हैं, इसके अलावा भी हम देखते हैं कि वहां पे दिन भर जितने भी लोग आते हैं ये भक्त सालवे की प्रार्थना के द्वारा ही भगवान को प्रार्थना करते हैं, अपना निवेदन अर्पित करते हैं। इसके साथ साथ ये प्रार्थना ओडिशा में स्कूल की प्रार्थना भी इस प्रार्थना को रखा गया है। तो आज तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, आज इसको गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं, गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी का आगमन होता है। तो फिर रिटर्न रथ यात्रा में फिर रिटर्न रथ यात्रा का भजन सुनेंगे। तो आज का भजन इस प्रकार से रहेगा। तो मैं पहले आपको एक सुना देता हूं, फिर उसके बाद आप मेरे पीछे दोहराएंगे, मैं दो लाइन गाऊंगा उसके बाद आप लोग समझ सकते हैं। पीछे दे दिया पेपर सबको। आहे नील शैल प्रबल मंत बरन प्रभु बल मंत बरन मोआर तनल नीब नकुकल दलन आहे नील शैल। तो इसको इस पर गाएंगे और नीचे वाले को डबल गाना पड़ेगा। गजराज चिंता कला थाई घोर जले न गजराज चिंता कला थाई घोर जले न चक्र पेशी नक्र नासी उधारी लापन आहे नील शैल। प्रारंभ करते हैं, तो आप सब लोग गा सकते हैं, साथ साथ गा लेंगे अच्छा रहेगा, काफी समय लग जाएगा। आहे नील शैल प्रबल मंत बरन मुहार तनल नीब नकुकल दलन आहे नील शैल। आहे नील शैल प्रबल मंत बरन प्रभु बल मंत बरन मोर तनल नीब नकुकल दलन आहे नील शैल। गजराज चिंता कल थाई घोर जले न गजराज चिंता कल चक्र पेशी नक्र नासी
उधारी लो अपन आगे न कनस उधारी लो अपन आहे नील शैल घोर बने मृगुनी पड़ी थी पसण घोर बने मृगुनी केड़े बड़ विपत्ति तारण केड़े बड़ विपत्ति करी अच तारण आहे नील शैल पुरुष भातले पुन द्रौपदी ओ पुरुष भातले सुन द्रौपदी जनन पुरुष भातले सुन कोटि वस्त्र देई हेल लज्जा कल बरन कोटि वस्त्र ओ कोटि वस्त्र देई हेल लज्जा कल वरन कोटि वस्त्र देई हेल आहे नील शैल आहे नील शैल रावण रबाई भीषण गल शरण रावण रावण रबाई भीषण गल शरण रावण शरण संबली तंकु लंके कल राजन शरण ओ शरण संबली तंकु लंके कल राजन शरण आहे नील शैल आहे नील शैल प्रह्लाद पिता से जो बड़ा दुष्ट दारुण प्रह्लाद पिता से जो प्रह्लाद पिता से जो बड़ा दुष्ट दारुण प्रह्लाद स्तंभ रूप हरि तंक विदारी लो तक्षण स्तंभ रूप हरि तंक स्तंभ रूप हरि तंक विदारी लो तक्षण स्तंभ रूप हरि तंक आहे नील शैल आहे नील शैल कहे साल बेदहीन जाति रे मु जवान कहे साल बेदहीन ओ कहे साल बेदहीन जाति रे मु जवान कहे साल बेदहीन गंगा चरण तल करुअछि जनना श्रीरंगा चरण ओ श्रीरंगा चरण तल करुअछि जनना श्रीरंगा चरण तल करुअछि जनना काहे नील शैल
सबको बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, मृदंग बजाने के लिए, करताल के लिए, और सब भक्त उपस्थित हुए। मैं श्री शारदाधिकार रमन कृष्ण बलराम गौर निताय जगन्नाथ पल्ली सुभद्रा मानव शिला प्रभुपाद गुरुदेव और सभी वैष्णवों से यह आशा करता हूँ कि मैं शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए सेवा कर सकूँ। बड़ा अच्छा लगता है भगवान की कथा कीर्तन करने में, और इस भौतिक जगत में तो एकमात्र आनंद है भगवानी कथा। चाहे हम जितना भी सेवा करते हैं, लेकिन हमें भगवान के नाम में, भगवान के नाम कीर्तन में, जप में, कथा में रुचि लेना चाहिए। यही हमारा जीवन जो है बचा के रख सकता है, खास कर भक्तों का जीवन। तो आज जब अभी जब भजन पढ़ रहे थे, इसका अर्थ इस प्रकार है कि इस भजन को हमारा जो किताब है क्षेत्र परिक्रमा, उसमें भक्ति पुरुषों महाराज ने इंग्लिश में अनुवाद किए थे, इस कारण से मुझे इजी हुआ है कि इसका लेने में। बाकी प्रभु जी से अनुमति मांगा था कि भक्त सालवे का भजन गा सकता हूँ, प्रभु ने ठीक है गा सकते, भक्त का ही भजन है। तो इसका अर्थ इस प्रकार है कि कहा कि आहे नील शैल प्रबल मंत बारण मुआरत नल निब नकु कल दलन। तो भक्त सालवे जी कह रहे हैं, हे नीलाचल में निवास करने वाले नीलाचल वासी, जो नील कंदर में, नील पर्वत के ऊपर जो विराजमान है, नीलाचल नीलाचल स्वामी, नीलाचल वासी जगन्नाथ, आप बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत प्रबलमंत बारण, आप बहुत ही शक्तिशाली है, इतने शक्तिशाली कि आपने मेरे सारे दुखों को समाप्त कर दिए। मो आरत नल निब नकु कल दलन, जो मैं दुखी समुद्र में पड़ा हुआ था, उसने उससे आपने मुझे रक्षा किया। तब भक्त सालवे के जीवन में देखते हैं किस प्रकार वो दुखी समस्या में थे, तो उनकी माँ के आदेश से, उनकी माँ ही जो उनके लिए गुरु बनी, उनके माँ के आदेश से उन्होंने जो है सारे दुखों को दुख समाप्त हुआ, वो भगवान कृष्ण का भजन किए। तो बाद में पता लगा कृष्ण कहाँ रहते हैं, वृंदावन में। तो उनकी माँ बताए, नहीं कृष्ण जो यहाँ हमारे पास में भी रहते हैं। भक्त सालवे का जन्म हुआ था दांड मुकुंदपुर। जब हम भुवनेश्वर से पुरी जाते हैं, रास्ते में पड़ता है, हम सबको पता नहीं चलता, लेकिन जब जानकार लोगों के साथ जाएंगे तो फिर वहाँ रुकते भी है, भजन भी करते हैं, छोटा सा मंदिर भी है। तो दांड मुकुंदपुर है, तो हमारे पास में ही जगन्नाथ जी का मंदिर है दांडा मुकुंद, फिर चंदनपुर आएगा, फिर साक्षी गोपाल, फिर जो पूरी पूरी आता है।
श्री श्री आदराधिकरण भगवान की जय। कृष्ण बलराम गौर नीता जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।
तो भक्त सालवेग जी कह रहे, आपने मुझे सारे मेरे दुखों को समाप्त कर दिया, ये आपका जो स्वभाव है। फिर कह रहे, गज राज चिंता कला थाई घरो जले न, चक्र पेशी नक्र नासी उधारी लो आपन। गजेंद्र ने चिंतन किया जल में रहकर, मैं भी जल में तैर रहा था, मैं भी दुखों का समुद्र में डूबा हुआ था, आपने मुझे रक्षा किया। इसमें गजेंद्र भी जो दुखों में पड़ा हुआ था जल में रहकर, उसने आपको प्रार्थना किया, लेकिन आपने अपने चक्र चक्र पेशी नक्र नासी, अपने चक्र को छोड़कर और नक्र नासी, अर्थात पहले क्या कहा जाता था कि हाथी के जो बड़े बड़े नाखून होते थे, और जैसे भगवान ने चक्र छोड़ा उसका रक्षा के लिए, तो नाखून जो काट दिए, इसलिए हाथी का नाखून नहीं होता, चिपका हुआ होता सिर्फ। चक्र पेशी नक्र नासी उधारी लो आपन, आपने उनका उधार किया, आपन मतलब आप जो है उनका उधार किए। अब इसके बाद आता है, घर बने मृगुनी को पड़ी थी कक्षण, केड़े बड़ो विपदी रू उधारी लो आपन। एक हिरन थी, उसने भी बहुत कष्ट में पड़ी हुई थी, उसको भी आपने क्या है, उसकी संकट भी आपने जो है उसका उद्धार किया। पुराणों में कथा आता है, एक हिरन जो है अपने बच्चियों के साथ जो है जंगल में चल रही थी, तो एक बैलिया ने देखा सुंदर एक जोड़ी हिरन जो है मुझे प्राप्त जो है होने वाला है। ये प्रसिद्ध कथा है, क्योंकि ये भजन जो है उड़ीसा में गाते रहते हैं, तो इस कारण से इस कथा को भी थोड़ा सा हमें पता भी था कि किस ये कथा कहाँ से आ रहा, तो बहुत प्रसिद्ध कथा है, सभी को पता होता है ऑलमोस्ट उड़ीसा में। तो हिरन जो है घूम रही थी जंगल में, बैलिया ने देखा तो उसको मारने के लिए उसने जो है बहुत बड़ा साजिश रचा, कि चारों तरफ उसने क्या किया, चारों तरफ तीन तीन तीनों तरफ जो है उसने आग आग लगा दिया, वो जो लकड़ी डालकर आग लगा दिया कि हिरण कहीं भाग ना पाए, और एक ही रास्ता होगा जो कि निकलने के लिए, और सामने खुद जो है धनुष बाण लेकर खड़ा हो गया। तो उसने देखा बहुत बुरी स्थिति पहुंच पड़ गई हूँ, हिरण ने सोचा अब तो मेरा मृत्यु होने वाला है, मैं भी मरूंगी, मेरे बच्चे भी मरेंगे, और सामने जाऊंगा तो ये बेलिया पड़ा है, मैं इधर भी जाऊंगा तो मैं जो है अग्नि में जल के मरूंगी, तो क्या करूं। तो उस समय उसने जो है भगवान को पुकारा, तो उसने फिर भगवान उनकी प्रार्थना सुना, फिर भगवान उनको इंद्र को आदेश दिया, तुम तूफान वहां जाकर तूफान तूफान मचाओ, अर्थात आंधी तूफान आया तो सारे अग्नि भी शांत हो गया और बेलिया भी बड़ा कष्ट में पड़ गया, इतना बारिश हुआ, इतने जो सब जो बारिश का आवाज जो होता है, बिजली चमकना ये सब हुआ, तो इससे जो है बहुत बहुत आंधी चला, तो वो भी कष्ट में भाग गया। तो इस प्रकार जो हिरण जो है वो अपने बच्चों के साथ सुख से जो है वो फिर भ्रमण करने लगी, तो भगवान का शरण ग्रहण करके। फिर आ कह रहे हैं, कुरु सभा सभा तले सुनी द्रौपदी रो जनन, केड़े बड़ा विपदीरू विपदीरू केड़े बड़ो हाँ कोटि वस्त्र दही है लज्जा कल बारण। तो जो द्रौपदी जो है वो कुरु सभा में कुरुओं की सभा में जो है उसने जो बड़ा दुखी में थी, तो उसने भी आपको प्रार्थना की, तो आपने उनको कोटि वस्त्र दही है ले, उन्हें करोड़ों वस्त्र उनको समर्पण करके उनका लज्जा को आपने रक्षा किया, और रावण का भाई विभीषण भी जो है आपका शरण ग्रहण किया, आपने उसको शरण संभालितां को लंके कल राजा, आपने शरण देके उनका अपने लंका का राजा बनाया। फिर प्रहलाद का पिता जो है बहुत दुष्ट था, और फिर आपने वो क्या स्तंभ से निकलकर आपने उनको विदारण किया। तो इस प्रकार, कहे साल वेग ही न जाति रे मु यवन, मैं साल वेग में प्रार्थना करता हूँ कि मैं जाति में बड़ा यवन हूँ, और श्रीरंगा चरण तले करो अच्छी जनाना, मैं आपके चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है मेरी रक्षा करें, आप में जो है मेरी भक्ति बनी रहे। तो हालांकि भक्ति सालवे का चरित्र चर्चा करने में बहुत समय भी लगेगा, तो हम देखते हैं भक्त सालवे का जीवन में जब भगवान के इतने अनुग्रह हुआ, ये तभी अनुग्रह हुआ कि जब व्यक्ति अपना बहुत छोटा समझता,
तब उनका भगवान का कितनी उनके ऊपर कृपा होती है, हम जो है हजारों उदाहरण देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आज उनका प्रार्थना है। और जगन्नाथ जी परम प्रिय भक्त थे साल्वेग, आज भी उनके जो भजन जो है बहुत प्रसिद्ध है और बहुत गाया जाता है, ये प्रमाणिक भजन है उनके। खुद उन्होंने जो है काफ़ी सारा भजन लिखे हुए हैं भगवान के सुंदर गुणगान के माध्यम से। तो आज भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, जैसे हमने कहा था कि हम जगन्नाथ जी को गौड़िया वैष्णव अलग दृश्य देखते हैं, हम चर्चा भी बहुत सुन भी चुके हैं। तो आज के हमारा जो चर्चा रहेगा कि उड़ीसा के लोग किस भाव में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मनाते हैं, और उसमें से एक पार्ट है जो लक्ष्मी का रोल होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। इस रथ यात्रा में आज बहुत ही उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में बहुत धूमधाम से इस उत्सव को मनाया जाता है सभी जगहों पर। पिछले साल भगवान जगन्नाथ जी का नवकलेवर उत्सव हुआ, और इस साल जो है फर्स्ट सेकंड रथ यात्रा जगन्नाथ जी का निकला। नवकल रथ यात्रा के बाद जो है सेकंड रथ यात्रा निकला। तो रथ यात्रा में सभी लोग आनंदित रहते हैं, सभी के मन में उत्साह होता है, सभी लोग भगवान को देखना चाहते हैं। एकमात्र जगन्नाथ ऐसे एक भगवान है जो मंदिर छोड़ के बाहर आते हैं। इसको कहा जाता है कि भगवान की दयालुता देखो, कितना कितना दयालुता है भगवान। अपने इतने दयालु है कि सब जीवों को मिलने के लिए, सब जीवों से मिलने के लिए भगवान जो है बाहर आ जाते हैं। वैसे ही मिलन है जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन। सारे आत्मा बाहर खड़े हैं, जीवात्मा बाहर खड़े हैं, और परमात्मा स्वयं भगवान उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और जीव भगवान के पास जाता है हमेशा, तो यहाँ जो भगवान आते हैं हम बदजीवों से मिलने के लिए। और हम जानते हैं कि रथ यात्रा कितना महत्व है। रथ यात्रा में सम्मिलित होने से हमारे सारे पाप समाप्त हो जाता है, दोनों हाथ उठाने से भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त होता है। ये इसीलिए होता कि भगवान जो है बाहर निकल के आते हैं, कृपा की अवस्था में आते हैं। कथा बहुत कहना चाहता हूँ तो इसका खासा जल्दीबाजी में थोड़ा सा तो समझना, सार लेने के प्रयास कीजिए। भक्त तो सब सार ही लेते हैं, क्यों हो सकता है कि नौबत खत्म ना कर सकता, स्पीड बोलना चाह रहा था। तो सभी भगवान जो है भगवान जीवों से मिलने के लिए भगवान आते हैं, तो इसलिए आनंद तो जरूर रहेगा। सभी के मन में उत्साह, सबके मन में आनंद है। भगवान का सारथी दारुक के मन में आनंद है, उद्धव जी का मन में आनंद है, सभी ब्रजवासियों का मन जो आज ही आनंदित हुआ है, क्योंकि आज जो है उनका जो है कृष्ण जो है वापसी आ रहे हैं। तो सभी को आनंदित भगवान किए हुए हैं। वहां का राजा का मन में आनंद है, सभी पुजारियों का मन में आनंद है, सभी दैत्यपतियों का मन में आनंद है, वहां के जो मुख्यमंत्री उसका भी आनंद है, वो भी अपना काम धाम छोड़ के आज रथ यात्रा देखने के लिए बैठे हुए हैं। सारे देवी देवता लोग भी आनंद है, सारे इंद्र चंद्र वरुण शशांक मरुत इत्यादि भी आनंद है, क्योंकि वो लोग अगर जगन्नाथ जी का उत्सव नहीं मनाएंगे तो उनका नौकरी चली जाएगी। भगवान ने कहा है कि मेरे भय से जो है इंद्र वर्षा करता है, मेरे भय से जो है सूर्य अपना जो है प्रकाश देता है, मेरे भय से जो है चंद्र अपना प्रकाश देता है, मेरे भय से औषधियां काम करते हैं। तो भगवान का उत्सव है तो क्यों नहीं उनका ड्यूटी बनता देवता लोगों का उत्सव मनाना। तो सभी लोग जो है बहुत ही आनंदित हैं। और इस समय भगवान जगन्नाथ जी का जो है रत्न सिंहासन से नीचे उतर रहे हैं, लगभग 9 बजे तक मंदिर से बाहर निकलेंगे, मंदिर से बाहर निकलेंगे उसके बाद तो फिर समय तो लगता ही है, जरूर रथ यात्रा अटेंड किए हुए पहुंडी विजय वगैरह सब देखेंगे। तो आज के दिन जो है सभी लोगों के मन में आनंद है, सभी आनंदित है, लेकिन दुखी है तो एकमात्र लक्ष्मी ही दुखी है। आज उनके मन में बहुत दुखी रहती है। तो भगवान जगन्नाथ जी अपना मंदिर छोड़ के जब निकलते हैं तो पहले बलराम जी निकल जाते हैं, सुभद्रा जी निकल जाते हैं, फिर जो लास्ट में जगन्नाथ जी आते हैं, तो जगन्नाथ जी के पीछे पीछे जो लक्ष्मी जी भी आती हैं। तो ये बहुत बड़ा उत्सव है। लक्ष्मी जी भी आती है क्योंकि उसके मन में दुखी है, क्योंकि अपने पति को छोड़ के वो कैसे रह सकती है। तो इसी में जो है लक्ष्मी जी, क्योंकि अभी अभी जो है लक्ष्मी का विवाह भी अभी थोड़े दिन पहले हुआ है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पांडव निर्जला एकादशी मनाते उस दिन जो है वहां पे रुक्मणी विवाह मनाते, क्योंकि हमें जगन्नाथ जी के विषय में जानने के लिए अगर पूरी जाते हैं जगन्नाथ जी से गौड़िया वैष्णव जरूर उनसे जो है लगाव रखते हैं, तो जगन्नाथपुरी जाएंगे क्या हो रहा है क्या हो रहा कुछ समझ नहीं आएगा, सर हम जा रहे हैं जरूर जो जिनको पता है दर्शन करने निकल रहे, लेकिन इस समय जगन्नाथ क्या पूजा हो रहा है क्या फेस्टिवल हो रहा है क्या रोल हो रहा है ये सब चीजें समझना इतना आसान नहीं, पता नहीं चलता, तो इसको बड़े जो है अच्छे ढंग से सुनकर और उसके माध्यम से जिसे सुना होगा तो फिर वही चीज को देख सकता, अच्छा भगवान का इस समय ए श्रृंगार है, ये दिन में जगन्नाथ का 7 बार श्रृंगार होता है तो कौन सा श्रृंगार क्या है कौन से मेल में कौन सा श्रृंगार होता है, तो जब सुनेंगे तभी पता लग सकता है। इसलिए हमारा उद्देश्य था कि जगन्नाथ जी को हम कुछ उनका पूजा विधि अर्चन के विषय हम आज चर्चा किया जाए सुना जाए। तो उसमें जगन्नाथ जी जो है अभी थोड़े दिन पहले जगन्नाथ जी का विवाह हुआ, तो विवाह उत्सव किस प्रकार से हुआ, तो विवाह में जो है जो पांडव निर्जला एकादशी मनाते हैं वहां बहुत बड़ा जो विवाह होता है, जैसे विधिवत या मनुष्यों का विवाह होता है उड़ीसा के उड़ीसा में जिस विवाह होता है उसी प्रकार लक्ष्मी जी का और जगन्नाथ जी का विवाह भी होता है। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी के मंदिर में से लगभग उनका दोपहर का आरती के बाद जगन्नाथ जी का आरती खत्म होने के बाद राजभोग लग जाता, आरती के बाद जो है लक्ष्मी मंदिर से एक ब्राह्मण आते हैं, दाढ़ी होगा मूछ होगा लंबे लंबे बाल होगा, उसके साथ जो है एक व्यक्ति आएगा घंटा बजाते हुए और छतरी से ब्राह्मण का वेश में छतरी लेते हुए पहले के समय आते हैं, तो लक्ष्मी मंदिर से जो है एक छोटा सा प्रोसेशन आएगा, वो आएगा जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर, तो जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने आके जो है वो ब्राह्मण जो है वो पत्र पड़ेगा, जो लक्ष्मी जो है जो रुक्मणी जो पत्र लेके भेजती है, बड़ा सुंदर पत्र है, इसका अनुवाद भी लिखे हुए थे लेकिन पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो वही है उन्होंने जो रुक्मणी जी प्रार्थना करती है जो उड़ीसा में पद के अनुसार, तो पिछले बार हम थे तो वहां पे जो पर्चा मांगा था क्या लक्ष्मी जी क्या पत्र भेजी रुक्मणी जी क्या पत्र भेजी इधर, तो जगन्नाथ जी सुना दिए उसके बाद पढ़ रहे थे, तो यही था कि हे भगवान जगन्नाथ हे ब्रह्मा शिव इंद्र इत्यादि के आराध्य भगवान कि आपसे आपके विषय में इन लोगों से सुनकर नारद जी सुनकर मैं आपके पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, और लेकिन बहुत समस्या है और बहुत अच्छा गुणगान करती है, पहले तो जगन्नाथ जी कृष्ण का गुणगान करती है, आप सभी भूमंडल के स्वामी हैं सारे देवी देवता लोग आपके चरण कमलों का आदेश का पालन करते हैं, और मैं जो है एक स्त्री हूँ अबला स्त्री हूँ मैं आपसे जो है विवाह करना चाहती हूँ और आपको मैं पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ समस्या है कुछ जो है मेरे भाई नहीं चाहता और साथ में शिशुपाल और रुक्मी इत्यादि जो है जरासंध इत्यादि द्वारा ये सब नहीं चाहते, लेकिन अगर आपसे मैं विवाह करना चाहती हूँ अगर आप विवाह नहीं करेंगे तो बेश मैं आत्महत्या कर लूँ चाहे 100 जन्म लेना पड़े लेकर लेकिन आपको ही मैं पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, तो आप तो फिर वो बताती है कि आप तो सर्वश्रेष्ठ है सर्वशक्तिमान है आप आइए और मेरा हरण कीजिए, मैं आपको तरीका बताती हूँ कि हमारा रिवाज है कि शादी से पहले जो कन्या जो है वो देवी दुर्गा के मंदिर में जाती है, तो देवी दुर्गा वहाँ पर तो बिमला देवी है तो सब लीला वहाँ पर होगा आप बताएंगे, तो देवी दुर्गा के मंदिर में जाते हैं वहाँ से आप मेरा अपहरण कर सकते हैं, तो कभी अगर जाएंगे तो उस टाइम में जाएंगे तो आप सब प्रोसेस देख सकते हैं, कोई आपको बताएगा नहीं लेकिन आप पता है तो देख सकते समझ सकते हैं हाँ जगन्नाथ जी ये पास टाइम होता है। और जगन्नाथ जी की लीला ऐसे ही है जैसे भगवान का प्रत्यक्ष लीला है इस समय जो होती है, और उन लीलाओं को कोई व्यक्ति जान लेता है इसके लिए हम देखे उड़ीसा में जो लोग वहां बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहां हमेशा के लिए निवास करते हैं जगन्नाथ जी के पास, कुछ मिलता नहीं है उनको सुविधा कोई नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सुविधा है हरिकथा है प्रसाद है भक्तों का संघ है फेस्टिवल है सेवा मिल जाता है,
वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहां से कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोग अपना जगन्नाथ जी, से बस देख के ही उनको जो आनंद आनंद प्राप्त होता है। एक वृद्ध माता जी से मेरे बात हो रहा था, मैं कह रहा आप कैसे हो, यहाँ पे कितने साल से रुके हो, कैसे आए हो। तो माता जी कह रही थी कि देखो मेरे शरीर में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, लेकिन जब मैं मंदिर के अंदर आती हूँ, आज जगन्नाथ जी को देखती हूँ और इतना भीड़ भड़ा का, इतना आप जानते हो, इतना शोर शराबा होता है अंदर, लेकिन सारा कष्ट भूल जाती हूँ और उसी से जब मुझे जब परम सुख मिलता है, तो जगन्नाथ जी को देखने में जब परम सुख है। तो अभी मनुष्य जीवन का सार्थकता यही है हमारी भाषा में कि जगन्नाथ जी की लीलाओं में सम्मिलित होना। तो जगन्नाथ जी कोई भी लीला ले लीजिए, आज का रथ यात्रा लीला, जगन्नाथ का विवाह लीला ले लीजिए, स्नान यात्रा ले लीजिए, सब कुछ लीलाओं में, उसमें अगर व्यक्ति हम देख रहे, खड़े होकर देख रहे जगन्नाथ जी को गुणगान कर रहे, कीर्तन कर रहे हैं, तो ये हमें भगवान के साथ जो है प्रत्यक्ष लीला है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से, लीलाओं में अगर आपको आपको प्रवेश करना है तो यद गत्वाना निवर्तन्ते तद्धामं परममम, तो त्वत्व देह पुनर्जन्म, ठीक है ना, शरीर त्याग करने पर भगवान का संग प्राप्त होगा। लेकिन कलयुग में आज के समय जगन्नाथ जी के उत्सव में भाग लेना ये जगन्नाथ जी के लीलाओं में भाग लेने के बराबर ही है। तो उसी में ही जो है जो इस प्रकार से कहकर वो ब्राह्मण जो है लक्ष्मी मंदिर में आते हैं और उनको बताते हैं, खबर दे दिया है और कृष्ण जो है आ गए। तो जैसे ही पढ़ते हैं, जैसे ही ब्राह्मण पढ़ लेता, तुरंत कृष्ण का जो है रथ जो है सजना शुरू हो जाता। उनका एक पालकी होता है, मुक्ति मंडप के सामने सजना शुरू होता, वहां सज के रेडी होगा। लक्ष्मी जी पहुंचेगी, जैसे पहुंचेगी उस समय जो कृष्ण जो है पालकी में बैठकर आगे जो है बड़े सुंदर ढंग से, आराम से, बड़े अच्छे तरीके से बिमला मंदिर के सामने लेके खड़े हो जाएंगे। कृष्ण जो खड़े हुए थे ना दुर्गा मंदिर के सामने, बिमला मंदिर के सामने जो है सब उनके जो जो जगन्नाथ के सेवक है पालकी में बिठा के, अच्छा पालकी होता, छः छः करीब आठ लोग लगे रहते हैं, बड़े सुंदर ढंग से उनको वहां प्रतीक्षा करेंगे। तो उसी समय क्या होगा, शिशुपाल, जरासंध, ये सब आ जाएंगे। तो उस समय क्या करें, कृष्ण जो है मंदिर के पीछे, एक गणेश जी का मंदिर है, वहां धीरे धीरे बड़े सुंदर ढंग से, बड़ा स्टाइल से जो है उनका पालकी का देखने में बहुत अच्छा लगता है। पालकी जो जैसे रथ जो है बैक करेंगे, तो पालकी जब बैक करेंगे वहां एक कोने में छुपे रहेंगे, उस समय वहां सारा लोग भर जाएंगे। क्या हो रहा, लोग भरे हैं, आप जाएंगे तो भीड़ दिखाई देगा, ये जिसको पता है वही दिखाई देगा, इस समय भगवान की लीला हो रहा। तो वहां जो है कृष्ण छुप जाएंगे। तो उस समय क्या होगा, रुक्मणी जी एक अलग पालकी में, लक्ष्मी मंदिर से पालकी निकलेगा, वहां से घंटा, मृदंग, करताल के साथ जो है, सैनिकों के साथ जो है वो आएंगे बिमला मंदिर में। तो बिमला मंदिर के बाहर ही खड़े होके लक्ष्मी जी अंदर जाएगी बिमला माता पूजा करने के लिए। और जैसे ही बिमला माता पूजा करके आएगी लक्ष्मी जी, तुरंत कृष्ण पीछे छुपे हुए रहेंगे, तुरंत सामने आ जाएंगे और लक्ष्मी जी को जो है अपने पालकी में बिठा देंगे। तो उसके बाद अब जो है रुक्मणी कृष्ण का रथ में विराजमान हो गया। अब सुंदर ढंग से बड़े अच्छे पदों के माध्यम से गीत गाते हुए जो है उनको झुलाते हुए बड़े अच्छे ढंग से स्लोली स्लोली उनको लेते हुए जाएंगे। तो पीछे की तरफ आ जाएंगे लक्ष्मी मंदिर के लगभग सामने की तरफ पहुंच गए, उसी समय जो है रुक्मी आ जाएगा, रुक्मी और शिशुपाल, वो बेस बनाकर तलवार लेकर। उसी समय जो है कि फिर जो यहाँ पे जगन्नाथ जी का एक पार्षद कृष्ण के बेस में जाएगा, वहाँ धमासम जो बड़ा युद्ध होगा। धमासम युद्ध होने के बाद जो है सब वहाँ लोग खड़े होकर देखते रहेंगे, धमासम युद्ध होगा वहाँ, फिर काफी बड़ा युद्ध होता है। उसके बाद रुक्मी को, शिशुपाल को, दोनों को पकड़ के हार जाएंगे, दोनों को पकड़ बांध के लेके आएंगे जगन्नाथ जी के जो पालकी है उसमें जो है दोनों हाथ बांध के उनके सामने खड़ा कर देंगे। अब दोनों जो है हाथ बंधे हुए खड़े हुए हैं, पीछे से बलराम जी और एक पालकी में आएंगे, वो आके जो है उनको कहेंगे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उनको मना करें छोड़ो ये हमारा ही है, तो हमारा ही है, जैसे इसे नहीं करना चाहिए, छोड़ के जो है फिर वो उनका बंधन खोल के बलराम जी चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं वो तो चले जाएंगे। और उसके बाद जब बड़े अच्छे ढंग से मंदिर का परिक्रमा करते हुए रुक्मणि जी का और कृष्ण को लेके आएंगे, मुक्ति मंडप के सामने एक मंडप है माजना मंडप, वो जगन्नाथ जी का विवाह मंडप है, उसमें जो है सिर्फ विवाह होता है और भजन होता है, साल भर भजन होगा, दो तीन फेस्टिवल में वहां रुक्मणी बैठेंगे, रुक्मणी कृष्ण बैठेंगे, तो वहां बैठेंगे और विधि पर जैसे पूजा विधि वगैरह होता है उसी प्रकार पूजा विधि वगैरह होगा, जैसे देखते हैं कि हाथ में बांधना और जो हवन होना फेरी होना और फिर लोग जो गिफ्ट देते हैं वो सारा विधिवत जो है वो होगा। तो समझो निर्जला एकादशी का पूरा दिन हो गया, सारा रात जो है विवाह में निकल जाएगा, सुबह 4 बज जाएगा। उसके बाद सुबह जो है वर और वधु स्नान करेंगे और विवाह मंडप में ही रहेंगे, लोगों से मिलेंगे जो चीज होगा विवाह मंडप में रहेंगे। अगले दिन रात को उस समय जैसे बारात निकलता है उड़ीसा में तरीके बारात निकल, उस समय बारात निकलेगा पूरा विधिवत, जैसे बैंड बाजा होता है, साउंड सिस्टम होता है, नृत्य गीत इत्यादि के द्वारा जो है मंदिर से रात को 12 बजे बाहर निकलेंगे। क्यों 12 बजे निकलेंगे, सबसे पहले जाएंगे मंदिर से बाहर निकलेंगे महाराज गजपति महाराज के पास जाएंगे, उस लीला में गजपति महाराज भीष्मक का रोल निभाते हैं, तो गजपति महाराज मंदिर महल से बाहर आएंगे, उनको उनको वंदना करेंगे और दोनों को वर वधु को लेकर जाएंगे, और जितने भी बड़ी यात्री होते हैं सबके लिए फ्री प्रसाद होता है, बाकी दिन तो प्रसाद होता है जगन्नाथ मंदिर में पैसा लगता है, लेकिन उस दिन जो है जो राजा की तरफ से जो है भीष्म के तरफ से जो पूरा प्रसाद स्पॉन्सर्ड होता है, तो सभी को हजारों हजार लोग जो है करीब 20-25 हजार लोग जो फ्री भोजन करते हैं प्रसाद पाते हैं। तो फिर उसके बाद जो वहां से भीष्म के घर पे जाएंगे, गजपति महाराज के घर पे जाएंगे, वहां वंदना होगी, सब होने के बाद जो है उसके बाद वहां से यात्रा निकलेगा, जाएंगे यमेश्वर महादेव के पास, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही क्या होता शिव जी का विवाह हुआ था यमेश्वर महादेव जी का, तो यमेश्वर महादेव जब विवाह हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने जगन्नाथ जी ने उनको इन्वाइट किया, ठीक है आप भी आपका विवाह हुआ है आप अपनी फैमिली के साथ आइए हम इकट्ठे जो है डिनर करते हैं। अब थोड़े दिन बाद जो है कृष्ण का विवाह हुआ तब महादेव जी यमेश्वर महादेव उनको इन्वाइट करेंगे, आप रुक्मणी के साथ आइए हम अपने यहाँ भोजन करेंगे, तो वहां से प्रोसेशन निकलेगा यमेश्वर महादेव के पास जो है शिव जी का पार्वती लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी जो सब जो है वहां प्रसाद ग्रहण भोग ग्रहण करेंगे, उसके बाद वहां से जो प्रोसेशन जो यहाँ से आएगा, उसके बाद जगन्नाथ जी का जो है विवाह के बाद उड़ीसा में जो है वो खेलते हैं जो पासा, पासा समझते हैं ना जो पासा खेलना, चौसा बोलते हैं, चौसा खेलते हैं, तो चौसा खेलेंगे लक्ष्मी जी रुक्मणी जी और कृष्ण चौसा खेलेंगे, इसमें कौन हारेगा कौन जीतेगा, तो इसमें कौन हारेगा गेस कीजिए। हाँ शाबाश आप समझ गए, तो जगन्नाथ जी जो हार जाएंगे और रुक्मणी जी जीत जाएगी, तो रुक्मणी जी कहेगी कृष्ण कहेंगे कि मैं जो है आप बताइए मैं इसके बदले में क्या दूं, तो कृष्ण कहते जो रुक्मणी जी कहती है ठीक है आप जो है इसके लिए आप मेरे अंतपुर में कुछ दिन के लिए ठहरिए, हारने का जो है ये कहते कि आप मेरे पास कुछ दिन के लिए मेरे महल में आप रुकिए, तो कृष्ण जो है मान जाते हैं। फिर आपका निर्जला एकादशी के 2 दिन बाद जो है स्नान पूर्णिमा होता है, हालांकि हम लीलाएं कथा अलग सुनते हैं लेकिन इतना सा उड़ीसा का विचारधारा के अनुसार जगन्नाथ जी लीला, तो जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा होता है, स्नान यात्रा में जगन्नाथ जी जो देखते हैं तो जगन्नाथ जी वहां बहाना मनाते हैं क्योंकि वो हार चुके हैं, लक्ष्मी जी पास रहना है, किसी और को समय देना नहीं है, आप कहते हैं अभी हम बीमार हो गए, अभी हमें बुखार हो गया है, अभी हम किससे मिलना जुलना कुछ नहीं, अब जो है हम रेस्ट करेंगे, ये तो बहाना है, लेकिन रहते हैं जगन्नाथ जी रुक्मणी जी के अंतपुर में जो रहते हैं। और ठीक जैसे ही 15 दिन खत्म हुआ, कल ही जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ, कल ही जगन्नाथ जी जो है जगन्नाथ जी बाहर आए, जगन्नाथ दर्शन हुआ, और तुरंत आज जो है मंदिर छोड़ के बाहर चले जा रहे हैं। तो रुक्मणी जी को लक्ष्मी जो कितना कष्ट होगा, इतना दिन अपने पति के साथ रही पतिव्रता शिरोमणि, किस चीज में कमी तो नहीं है, रुक्मणी किसी में कमी नहीं है, सभी देवी देवता लोग उनके चरणों की वंदना करते, सभी ये आशा करते हैं कि जो है लक्ष्मी जी कृपा कटाक्ष जो हमारे ऊपर पड़े, लक्ष्मी को सभी लोग चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी सबको छोड़कर वो जगन्नाथ को चाहिए, जगन्नाथ से प्रेम करती है, और वो जगन्नाथ जो है तुरंत इतना रहने तुरंत जो है वो लक्ष्मी को छोड़ के तुरंत बाहर चले आ रहे हैं अपने भाई और बहन के साथ। तो इसमें जो है, और लक्ष्मी जी बताए भी नहीं कि मैं कहीं, या इतना दिन रुके हुए थे, इतना भी नहीं बता रहे थे कि मैं थोड़े दिन बाद जो है मैं थोड़ा घूम के बाहर जा, मेरा एक उत्सव चल रहा है, मैं घूम के आ जाऊंगा, समाज में जा रहा था भ्रमण करके मैं आ जाऊंगा, कुछ नहीं बताए। और तुरंत जो है चुपचाप जो है जगन्नाथ जी बाहर निकल रहे हैं, तो लक्ष्मी जी पीछे पीछे आती है, तो जगन्नाथ लक्ष्मी जी को जगन्नाथ जी देखते हैं लक्ष्मी को, तो पूछते प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, कह रहे मैं, तो लक्ष्मी तुरंत सामने आ गए, तो कहते मैं जा रहा हूँ थोड़े दिन में, तीन चार दिन में आ जाऊंगा। तो एक झटका लगता है लक्ष्मी के ऊपर कि मेरे से क्या गलती हो गया, मैंने क्या अपराध कर दिया, मेरे से कुछ बताया नहीं, अगर मैं उनकी पत्नी हूं तो इनका फर्ज बनता है मेरे को लेके जाए, जहां भी जाएंगे आप विवाह के बाद पति पत्नी साथ जाएंगे ना, इकट्ठे घूमेंगे, अब यहाँ पत्नी को छोड़ के जा रहे हैं, तो एकदम बहुत झटका सा लगता है। वो बिचारी वहां जो है सीढ़ी में खड़े होके जगन्नाथ जी को देखते रहती है। जब पतिव्रता शिरोमणि होती है वो अपने पति से कितना प्रेम करती है, हम शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्रों को पढ़ के सुनकर अच्छे ढंग से भक्ति करके हमारा जीवन सफल हो सकता है, हम समझ सकते हैं कि हमारा ड्यूटी क्या बनता है, हर कोई अपने कार्यों को अच्छे ढंग से कर सकता है। एक जो स्त्री है अपने पति की कैसे सेवा करना चाहिए वो भी देख सकते हैं लक्ष्मी नारायण के लीलाओं में, और इधर शिव जी का पार्वती जी का लीलाओं में देखिए, शिव जी हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र जपने में लगे रहते हैं, पार्वती कभी डिस्टर्ब नहीं करती है ना, कोई मत है ना। तो इस प्रकार जो है पारिवारिक जीवन होना चाहिए, अगर सती स्त्री में देखा जाए तो लक्ष्मी तरह सती होना चाहिए, क्या अवस्था होता है लक्ष्मी जी का। तो लक्ष्मी देखती है, देखती है कि धीरे धीरे देखती है कि जगन्नाथ जो है इतने अपने हृदय को कठोर करते हुए मुझे छोड़ के जो है वो बाहर जा रहे हैं। अब एक सती स्त्री को एक क्षण भी पति के बिना रहना तो असंभव है, इसलिए पहले के समय में जैसे ही पति शरीर छोड़ते थे पत्नी तुरंत सती हो जाती थी, तुरंत उसी चिता में जो आपने वो जला देती थी। तो ये जो है एक हमारा वैदिक कल्चर है। तो लक्ष्मी देखती है कि जगन्नाथ जी देखती है कि रथ भी चली गई, वो सीढ़ी में खड़े होकर उनको देखते रहती है, देखती है कि रथ भी जो है अदृश्य हो गया और दुखी हो जाती है। उसी समय लक्ष्मी जी का जो सहेलियां हैं वनिताएं, उनको आकर जो है समझा बुझा के लक्ष्मी जी को देखो प्रभु का ऐसे ही कपट होता है, ऐसे ही उनकी लीला है, कोई कह नहीं सकते, चलो आप अंदर चलिए, उनको जो है फिर मंदिर के अंदर लेके जाते हैं। लेकिन इन दिनों में जो है जब तक जगन्नाथ जी मंदिर में नहीं होते तब तक जो है वो एक एक क्षण जगन्नाथ जी को स्मरण में अपने जीवन बिताती है। जैसे हमारे जो विष्णु प्रिया जी थे, जब गौरा महाप्रभु चले गए उन्हें खाना पीना सब बंद हो चुका था, हरे कृष्ण महामंत्र जप करती थी, एक एक महामंत्र पूरा 16 माला पूरा महामंत्र बोल के एक दाना निकालती थी, दिन भर में जितना हरे कृष्ण महामंत्र उतना चावल को उबाल खाती थी। तो उसी पर लक्ष्मी जी जो है इन दिनों में कोई भोग ग्रहण करना छोड़ देती है, कोई उनके इतना सुंदर वैभव भोग अर्पित होता है सब कुछ छोड़ देते, कुछ भी नहीं खाती, केवल जीने के लिए ही साग और जो है हाँ थोड़ी साग और थोड़ा सा जो है अन्न जो खाती है, मूंग का दाल साग और जो है ये जो चावल, ये तीन ही इन दिनों में भोग लगता है लक्ष्मी जी को, ये खा के जो प्रतीक्षा करती है, वो प्रतीक्षा करती है कि जगन्नाथ मेरे हाथ का बना हुआ व्यंजन खाते थे, जगन्नाथ मंदिर में तो लक्ष्मी का हाथ का बना हुआ भोजन जगन्नाथ जी खाते हैं, ये देखती है कि उनका रूप प्रतिदिन में जो है रत्न पलंग में उनके चरण संवाहन करती थी, अब एक एक क्षण जगन्नाथ जी को स्मरण करती है और देखती है 3 दिन कह रहे थे कि 3 दिन में मैं वापसी आ जाऊंगा, जगन्नाथ जी वापसी नहीं आए और सभी बाकी जो देवी देव बाकी देवी देवता वहां तो होते ही है जगन्नाथ मंदिर के अंदर, षष्ठी देवी, पार्वती जी, सरस्वती जी, सची देवी मतलब इंद्र का पत्नी, ये सब लोग देखते हैं लक्ष्मी जी के ऊपर हंसते हैं, कहते तुम्हें क्या हो गया, देखो तुम कैसी स्त्री हो, देखो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चले गए। तो सब लोग उनको जो है टोकती है, तो इसको बड़ा गुस्सा आता, भाई 3-4 दिन 5 दिन हो गया, अब स्त्री तो उनकी पत्नी है तो स्त्री को गुस्सा भी आएगा, तो गुस्सा आता, तो उनको देखो मैं जाकर जगन्नाथ जी को लेकर आती हूँ, तुम लोग देखना मैं जाकर जगन्नाथ जी को लेकर आऊंगी, तुम सबको जो है वचन देती हूँ। तो बड़े ऐश्वर्य ढंग से ठाट बाट होकर जो है जा भाई हमारा आएगा हेरा पंचमी। तो पालकी में लक्ष्मी जो है अपने सैनिकों के साथ वैभव ढंग से जो है मंदिर से बाहर निकलते, जगन्नाथ जी बुलाने के लिए जाती है। हम हेरा पंचमी लीला कुछ और सुनते हैं, लेकिन हाँ पिछले साल देखा था वहां पर कुछ और ही लीला होता है, तो उस लीला का हम बखान करना चाह रहे थे। तो लक्ष्मी जी बाहर निकलती है पूरा ऐश्वर्य ढंग से और देखिए सारा दुनिया देखता है, सब दुनिया को पता, देखो मैं जाके मेरा पति जगन्नाथ, मैं जगन्नाथ जी को लेकर मंदिर लेके आऊंगी, देखो मेरा सतीत्व। तो सबको देखती है, तो जगतवासी मंदिर से सारा जगत उनको देखता है लक्ष्मी जी को, और सभी लोग उनको पूजा अर्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं, सब लोग पूजा सबका पूजा ऐश्वर्य ढंग से पूजा ग्रहण करते करते जो है वो गुंडीचा मंदिर जाती है। देखती है तीनों रथ खड़ा है, एक बलराम जी का रथ है, एक सुभद्रा का रथ है, एक जगन्नाथ जी का रथ है। तो जगन्नाथ तुरंत जगन्नाथ जी के रथ के पास पहुंचती है, तो जगन्नाथ जी का रथ का रखवाली करने वाले होते हैं सारथी दारुक। तो दारुक से पूछती है कि भगवान कहाँ है, जगन्नाथ जी कहाँ है। तो सबसे पहले दारुक से पूछती है, लोग कहते हैं कि रथ तोड़ देते कर देते, लेकिन ऐसे कुछ होता नहीं। हमने पूछा भाई, हमने सुना था कि रथ तोड़ते के वो कह रहे अगर रथ का एक पहिया तोड़ेंगे 5 लाख का खर्चा है, तो रथ का कहाँ तोड़ेंगे इसको। तो पहले वहां जाके दारुक से पूछती है, दारुक सबसे पहले उनका पूजा करता है, उनकी वंदना करता है लक्ष्मी जी का, कि पूछती है कि दारुक भगवान कहाँ है। तो भगवान जो है अंदर बैठे हुए हैं, इशारा करते हैं। तो लक्ष्मी जो तुरंत जो है गुंडीचा मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाती है, पूरा मंदिर के पूरा जगन्नाथ जी पास जो चली जाती है, वहां थोड़ा दूरी पे खड़े होके देखती है कि उस समय जो जगन्नाथ जो क्या करते, वो भी जो है वो चौसा खेल रहे होते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चौसा खेल रहे होते हैं। तो जगन्नाथ तुरंत देखते हैं कि लक्ष्मी जी आ गई, उनको देख के तुरंत सिर नीचे कर देते हैं, तुरंत सिर नीचे करके जो है अपने चौसे खेले में लग जाते हैं। और लक्ष्मी जी को बड़ा गुस्सा आता, कहते मैं इतना दूर से चल के आया हूँ, बुलाने के लिए आए हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उनके पास आई हूँ, क्योंकि अपने स्वतः ही पास तो जा नहीं सकती, पास में जा नहीं सकती, क्योंकि वहां पे जो है जेठ भाई साहब बैठे हुए हैं, बलराम जी बैठे हुए, पास में जा नहीं सकती। तो दूर में खड़े होकर जो है देखती है, जगन्नाथ भी कुछ रिस्पॉन्स देते नहीं है। तो वो जो उसको बड़ा गुस्सा आता, वो तुरंत मंदिर से बाहर निकल जाती है, बाहर जो एक चबूतरा है वहां जाकर बैठ जाती है। और जगन्नाथ जी समझ जाते, लक्ष्मी जी समझ जाते, बड़े क्रोध में है, बड़े क्रोधित में है। तो वो जो अपने गले के माला जो है, उनके पुजारी है जो नित्य सेवक है बितरच महापात्र, उनका जो जगन्नाथ जी सब मेन कार्य वही करता है। तो बितरच महापात्र बोलते कि आप जाकर लक्ष्मी जी को मनाओ, बोलो कि मैं थोड़े दिन में वापसी आ जाऊंगा, 2-4 दिन में वापसी आ रहा हूं। और उसको दुखी होने की आवश्यकता भी नहीं है, वो सोचती है कि मैं मंदिर छोड़कर चला गया, मैं मंदिर में छोड़ गया नहीं, मैं मंदिर में ही हूँ। तो लेकिन वो सोचती है कि मुझे छोड़कर चले गए, जब उसको जाकर था सब मना दो। तो बितरस महापात्र जगन्नाथ जी का माला लेके आते, उनको लक्ष्मी जी को अर्पण करते, देखो भगवान ने आदेश दिया है, अगर जगन्नाथ जी माला आया मतलब उनका आदेश आया, जैसे ये सब जो है माला प्राप्त होता है इसका बहुत महत्व होता है, कभी कभी बताएंगे। इस माला को देखकर इंद्रदुन महाराज क्या माला का स्तुति कर रहे थे, क्या गदगद हो रहे थे। अगर माला मिल रहा है तो भगवान का आदेश मिल रहा है। जब चैतन्य महाप्रभु जब गए थे वहां पे खीर चोरा गोपीनाथ चले गए, तो महाप्रभु को देख के गोपीनाथ जी का जो माला माला जो गले से नीचे गिरा, तो महाप्रभु ने समझा बहुत बहुत जो है अच्छी बात है जब माला गिरता है। इसी प्रकार जब जगन्नाथ जी का नवकलेबर भी होता है तब भी जो है वो मंगला देवी का जो है उसका माला भी, उसका भी हाथ से माला गिरता है, चाहे लेफ्ट गिरेगा राइट गिरेगा कहीं भी गिरेगा तो उस तरफ भी दारू संधान के लिए जाते हैं। तो माला का बहुत महत्व होता है, हमें ऐसे कोई मंदिर से प्राप्त होता है ऐसे नहीं कि उठा कर रखती है, इसका स्तुति करना चाहिए वंदना करना चाहिए सीखना चाहिए। तो लक्ष्मी जगन्नाथ जी का माला आता है, पितर से महापात्र लक्ष्मी जी को मनाते मनाते देखो आप इतना दुखी मत होइए, भगवान का आदेश है, देखो क्या करे भगवान ऐसे ही है। अब लक्ष्मी का पक्ष जो है जगन्नाथ जी के सेवक, लेकिन लक्ष्मी का भी सेवक बनना पड़ेगा, तो उनसे उनको मनाते मनाकर उनको जो है आगे जो है आगे जो उनको जो है लक्ष्मी जो है फिर जो है मनाते हैं कि दो चार दिन में आ जाएंगे, बहुत मनाते हैं। आओ ये आप चिंता मत कीजिए कि जगन्नाथ जी वहां से छोड़ के आ गए, माधव जो है वहां छोड़ के आ गए ऐसी बात नहीं है, माधव वहां पर भी है। जगन्नाथ जी जो बड़े विग्रह है उनके नीचे छोटे विग्रह होते हैं, वो है माधव नील माधव, वो मंदिर छोड़े कभी बाहर नहीं जाते, वो मंदिर छोड़े कभी बाहर नहीं, तो वहां पर भी है, तो इनमें उनमें कोई अंतर नहीं है। फिर भी लक्ष्मी बड़े दुखी होकर जो है बाहर निकलती है, मंदिर से बाहर निकलती है दूसरे द्वार से, देखती है कि सारे दुनिया के लोग देख रहे हैं देख रहे, तो कह रही थी कि मैं जगन्नाथ जी को लेके आऊंगी, तो उसको लेके नहीं आई, सब हंसते हैं, तो बिचारी शर्माते हुए जो है, और वो बड़े रोड से जाती नहीं, ग्रैंड रोड से जाती नहीं है, वो पीछे गली से जो है बहुत फुर्तीला फिर भागते ही है उनको लेकर, बिचारी लोग उनको लेके भागते हैं, जाके मंदिर में छुप जाती है, फिर मंदिर में अपने मंदिर में रुकती है, फिर उसी प्रकार अपने समय व्यतीत करती है। फिर रिटर्न रथ यात्रा में क्या हुआ था, वो रिटर्न रथ यात्रा के दिन ही जो है हम उसको समझेंगे कि रिटर्न रथ यात्रा में जो है जगन्नाथ जी का क्या लीला हुआ था। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी का जो है आज के दिन सब दुनिया का सब प्रसन्न है, लेकिन जो है लक्ष्मी जो है एकमात्र जो है दुखी है। उसी प्रकार तो ये जो है लीला जो है आज के दिन जो है सब दुनिया खुश है, लेकिन आज लक्ष्मी जो है वो अपने पति के विरह में बहुत दुखी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो लक्ष्मी दुखी हुई, लक्ष्मी जगन्नाथ मंदिर छोड़कर चली गई, अब जब गुंडीचा से जब जगन्नाथ जी वापसी आएंगे वहां जो है राधा रानी दुखी हो जाएगी। तो यही जो जगन्नाथ जी का जो अद्भुत चरित्र है, उन्हीं लीलाओं में आज जगन्नाथ जी का जो पौंडी विजय हुआ है उसमें से जो है आप भगवान जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर निकले, तो उससे पहले जगन्नाथ जी का एक भोग लगता है, जगन्नाथ जी का अच्छा भोग अर्पण किया था खिचड़ी, वो कर्माबाई का खिचड़ी है। तो कर्माबाई का खिचड़ी सुनना चाहते हैं, कर्माबाई के विषय में तो 10-15 मिनट का सर 10 मिनट का करेंगे। तो कर्माबाई कौन थी जगन्नाथ जी की लीला में, तो कर्माबाई जो है कर्माबाई को याद करके जगन्नाथ आज के दिन जो है खिचड़ी खाते हैं जाने से पहले। कर्माबाई बात्सल्यमयी भक्त थी, बात्सल्यमयी माँ थी, वो जगन्नाथ जी के प्रति अपने पुत्र के रूप में व्यवहार करती थी। वो आई थी, विधवा स्त्री थी केरल से, वो केरल में जो है विधवा हो गई, उनकी पति गुजर गए, तो उनका पुत्र था, उसका नाम था सदन। वो पुत्र को जो है लेकर जो है सब लोग जब उनको तिरस्कार कर दिए, सबने कहा तिरस्कार किए, तो उसने सोची सबने मुझे तिरस्कार कर दिए तो जगन्नाथ जी मुझे एकमात्र रक्षा कर सकते हैं, मैं जगन्नाथ जी के पास जाना चाहती हूँ। तो अपने पुत्र को लेकर केरल से वो चलते हुए जो है जगन्नाथपुरी आ रही थी, लेकिन मन में उनका भावना थी जगन्नाथ जी के प्रति पुत्र की भावना, जगन्नाथ जी सोचती थी उनके लिए बहुत चिंता करती थी कि जगन्नाथ जी क्या मैं भोग लगाऊं। तो उनका बिचारी गरीब थी, क्या खाएगी क्या देगी, वो भिक्षा मांगती थी, भिक्षा में चावल मिलता था दाल मिलता था, आधा सा हल्दी डाल के जो है उसको एक बर्तन में उबालती थी, केले के पत्ते में रास्ते में जहां भी रुके हैं वहां से जगन्नाथ जी को समय पे भोग लगाती थी। उसका बड़ा जो है ये भावना थी कि जगन्नाथ जी को टाइम पे भोग लगाना चाहिए, उनको भूख लगता है, कि ये उसके मन में जो है भरा हुआ था। तो इसी प्रकार अपने जगन्नाथ जी को चिंतन करते करते जो है, और जब भोग भोग खा ले, भगवान आते थे भोग खाते थे, जो प्रसाद बसता है उससे खा के जो है बेटा माँ जो है वो यात्रा करते थे। उस प्रकार से करते करते जगन्नाथपुरी आ गए, जगन्नाथपुरी आ गए। जगन्नाथ जी के मंदिर के पास में एक घर लेकर वहाँ भिक्षा यापन करते थे, और जगन्नाथ भिक्षा यापन करते थे, और प्रतिदिन उनका डेली था जगन्नाथ जी को भोग लगाना, टाइम पे भोग लगाना। वो शुद्ध और अशुद्ध अशुद्ध का कोई विचार नहीं करते, जैसे भी हो जगन्नाथ टाइम पे भोग लगाना चाहिए, उसको बहुत भूख लगता है। फटाफट सुबह उठती अपना घर का काम करती और खिचड़ी बनाती, कर्माबाई खिचड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज जगन्नाथ जी खिचड़ी प्रसाद भोग लगता, जगन्नाथ जी खिचड़ी प्रसाद खा के बाहर निकलते, ऐसे नहीं निकलते। तो खिचड़ी बनाती थी, फटाफट भोग लगाती थी, फिर तुरंत मंदिर जाती थी, जगन्नाथ जी दर्शन करती थी, और वहां पे भागवतम क्लास होता था, तो बड़े तन्मयता से भागवतम सुना करती थी। तो इतनी तन्मयता से भगवान की लीलाएं सुना करती थी। तो इस प्रकार से उसका डेली का रूटीन था। तो एक दिन क्या हुआ, उसने कुछ कार्य बस जो है लेट हो जा रही थी, कर्माबाई लेट हो रही थी, मंदिर जा नहीं पा रही थी। तो देखा कि भागवतम सुनने का समय निकल गया, जो कथा हो रहा तो समय होता है, जैसे 8 से 9 कथा का समय है, उसके बाद तो कथा नहीं मिलेगा। तो उसने कहा बेटा, उसने सदन को भेजा, बेटा तुम जाओ जाके मंदिर में कथा जरा भागवतम सुन के आओ कि आज कथा में क्या हो रहा, फिर मुझे बता देना, मैं जाने पर मैं लेट हो रही हूँ, और जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाना है और उसे लेट हो जाएगा। तो उसी प्रकार कर्माबाई फटाफट खिचड़ी बना रही थी, खिचड़ी बना के भोग लगा रही है, और जगन्नाथ जी पुकार रही है, भगवान आओ आप भोग ग्रहण करो, भोग ग्रहण करो, भोग ग्रहण करो। और देखती है कि वो जगन्नाथ तो आ नहीं रहे, कृष्ण बलराम आ नहीं रहे खाने के लिए। तो क्या हो गया, वो बड़ा चिंता में पड़ गई, आज मेरे भोग में क्या हो गया, मेरे श्रद्धा में क्या कमी हो गया, मेरा भोग में क्या कमी है, क्या मेरा भोग में स्वाद कम हो गया, क्या हो गया, भगवान आ क्यों नहीं रहे। भगवान डेली आते थे उसे घर में, आके खिचड़ी खाने के लिए डेली आते थे। तो इस चिंता में पड़ी हुई थी, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, उसका जो मन छटपटा रहा है, क्या करूं। तो उतनी देर में क्या होता कि सदन आता है कथा सुनकर, सदन आता कहता कि सदन को पूछती है, बेटा आज कृष्ण बलराम आ क्यों नहीं रहे खाने के लिए, क्या हो गया। तो सदन कहता है, माँ वो कैसे आ पाएंगे, आज तो उनकी माँ ने उनको रस्सी से बांध दी है, दामोदर लीला का कथा हुआ था, माता यशोदा ने उनको रस्सी से उनको उखल में बांध दी, वो कैसे आ पाएंगे, क्या बात करो भाई कहते क्या बात कर रहे हो, उसको उखल में बांध दी, अरे उसे खाने का समय हो गया है, तो नहीं खाएगा तो भूखा हो जाएगा, आप उसको यशोदा कैसे उसको रस्सी से बांध के रख दी। यशोदा भी बात्सल्यमय माँ थी, ये भी बात्सल्यमय माँ थी, ये कथा कितने गहरे ढंग से लोग सुनते थे। तो कृष्ण को भूख लग रहा है, भूखा हो गया, खाने का समय हो गया, उसको भूख लग रहा होगा, और तो उसका समय हो चुका है, यशोदा कैसे उसको बांध के रख दी, दामोदर लीला भी सुबह सुबह का समय हुआ था। तो इस प्रकार से जो चिंतन करते करते, और जगन्नाथ आ नहीं रहे भोग खाने के लिए, और इस पर चिंतन करते करते उससे जो है रहा नहीं गया कर्माबाई से। वहां पे जगन्नाथ जी को याद करते छटपटाते हुए उसी समय उसने जो अपना शरीर छोड़ दिया, कि आज जगन्नाथ जी जो है कृष्ण बलराम खाने के लिए नहीं आए, उसका शरीर जो है शांत हो गया। तो जब शरीर शांत हो गया तो इधर जगन्नाथ जी के मंदिर में उनके पुजारी लोग देख रहे हैं कि जगन्नाथ जी की आंख में आंसू आ रहा है, पुजारी को समझ नहीं आया आज क्या हो गया, भगवान की आंख में आंसू ऐसे क्या चीज है, कोई किसी को समझ नहीं आ रहा। तो सब लोग जाके जो है महाराज से निवेदन किए, महाराज आज भगवान का आंख में आंसू आ रहा है, क्योंकि देखो वो तो एक सामान्य स्त्री थी, किसको पता है कौन है क्या भक्त है, कोई थोड़ा पता नहीं जाएगा कि मैं जगन्नाथ का भक्त हूँ, तो समझ नहीं आ रहा। तो उसी में गजपति महाराज ने कहा, जाके देखा सच में ये बात है, तो वहां पे फिर
पूजा विधि आरंभ हुआ और फिर वहाँ पे जो है एक एक पूजा होता है उसमें मंत्र सैन मंत्र पाठ करके व्यक्ति विश्राम करता है। तो वो सैन मंत्र पाठ पर विश्राम करने लगे तो उस समय जगन्नाथ जी सपने में आए। तो जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि आज मेरी माँ जो चली गई है आप जाइए उनको उनका जो पूरा संस्कार कीजिए, विधिवत संस्कार कीजिए, उसको कोई जानता नहीं है। फिर जगन्नाथ जी जो है फिर इसका आदेश पाके फिर राजा आदेश दिया सभी को। फिर सब लोग जाके देखे कर्मा भाई जो शरीर छोड़ चुके थे, आज सदन अकेला उसको समझ नहीं आ रहा भाई क्या हो गया, अच्छा तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर जो है उस राजा ने फिर सारा बंदोबस्त किया करके उनको जो है सारा बंद उनका फिर अंतिम संस्कार किया और सदन का पूरा देख रेख का काम जो है राजा ने अपने ऊपर लिया। तो चाहे उसी को याद करते हुए जगन्नाथ जी जो है आज भी चाहे भक्त चले गए संसार से, लेकिन भगवान कभी अपने भक्तों को भूलते नहीं है, भगवान जो है उनको याद किए, कर्मवाला को याद करते हैं। आज भी कर्माबाई के नाम से जो है उनका भोग लगता है, सुबह का जो है कार्तिक महीने प्रतिदिन उनका कर्माबाई का खिचड़ी लगता है और आज के दिन जगन्नाथ मंदिर छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो कर्माबाई का खिचड़ी खा के जो है वो बाहर निकलेंगे। चाहे हम भगवान को भूल जाएंगे, हम तो भूले ही बैठे हैं, लेकिन भगवान कभी अपने भक्तों को नहीं भूलते। आज भी वो कब जो है कर्माबाई खिचड़ी खिलाते, लेकिन आज भी जो है कर्माबाई का जो खिचड़ी जगन्नाथ उसको खाते हैं, उसमें सुगंध आता है। अगर हम लोग कार्तिक महीने में जाएंगे तो हम प्रसाद जो है मिल सकता है, बड़ा जो है वही बड़ा सिंपल प्रसाद है लेकिन होता है बड़ा सुगंध। जगन्नाथ के प्रसाद में बड़ा 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 विशेषता है। आप कभी जाएंगे तो अगर देखेंगे जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद गुंडीचा मंदिर का प्रसाद दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। आप यहाँ खाइए अलग सुगंध मिलेगा, वहां खाइए तो अलग सुगंध मिलेगा। और जगन्नाथ जी का प्रसाद मंदिर में आते रहे उसमें कोई सुगंध नहीं होगा, सुगंध होगा नहीं, लेकिन भगवान खाने के बाद उसमें सुगंध आता है, सारे मंदिर में वो प्रसाद का सुगंध आने लगता है। तो इसी प्रकार जो है आज जगन्नाथ जी का इस समय पहुंडी विजय हो रहा है, जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकल रहे हैं बहुत धूमधाम उत्सव के साथ। तो आज हमने दो लीलाओं को सुना, एक तो अपने भक्त को नहीं भूलते भगवान, भक्त को नहीं भूले, और साथ में जो है वो लक्ष्मी जी का क्या जो है उनकी भावनाएं रहती हैं। तो इसी के साथ जो है आज जगन्नाथ रथ यात्रा में उत्सव का दिन है, लेकिन इसी प्रकार जो है एक जो लक्ष्मी जी का इस भाव में जो है इस मूड से जो है रथ यात्रा मनाते हैं। उड़ीसा के लोग भी जानते हैं कि हालांकि भीड़ भड़ाका है, रथ है, रथ खींचना है, बहुत फल मिलेगा, लेकिन होता है कि आज जो ये घटना भी हुआ था ये उड़ीसा वासियों को पता है। हरे कृष्ण, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जगत